ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती वर्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 34 और 35। तो 34 में प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है, तो इसलिए हम 34 पढ़ेंगे और उसके बाद जब 35 हम पढ़ेंगे तो आप लोग दोहराइएगा। श्री ऋषि उवाच अभ्यर्थित सुरगण पौरहित महातप स विश्वरूप स्थान प्रसन्न लक्षण या गिरा। अनुवाद इस प्रकार है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, अब आप दोहराएंगे, श्री विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीले ब्रह्मा वर्च उपवेयम् कथानुमद्दिदो नाथ लोकैश्चर्यभियाचितम् प्रत्याख्यासित दक्षिसे स एव स्वार्थ उच्यते। शब्दार्थ इस प्रकार से है, श्री विश्वरूप उवाच, श्री विश्वरूप ने कहा, आप पीछे दोहराइए, श्री विश्वरूप उवाच, श्री विश्वरूप ने कहा, विगर्हितम निंदनी धर्मशीलय धर्म में आस्था रखने वाले ब्रह्मवर्च ब्राह्मण के तेज का उपव्ययम छीण करता है, कथम कैसे नु निसंदेह मत मत विद मुझ जैसा पुरुष नाथा हे स्वामीगण लोक इसय विभिन्न लोकों के शासकों द्वारा अभियाचितम विनय प्रत्याख्याति मना करेगा, तब शिष्य उनका शिष्य स व एव निसंदेह स्व अर्थ वास्तविक हित स्वार्थ उच्चते कहलाता है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहिती की निंदा की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को फिर कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं, मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। अतः मैं आपको ना नहीं करना कर सकता, मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन पाठन यजन याजन दान तथा प्रतिग्रह। यजन तथा याजन शब्द यह बताते हैं कि ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है वह अपने यजमान के पापपूर्ण बंधनों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्ण कर्मों के फल का हास होता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते, तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की। ओम ज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं मानो परमानन्दमाधवम्। आज इस भागवत कक्षा के सत्र में काफी कुछ नए भक्त लोग आए हुए हैं और जो प्रतिदिन यहाँ पे कक्षा में बैठते हैं उनको तो इस कथा के बारे में पता है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा शुरुआत में। और कथा का जो दृष्टांत है, कथा का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो इस प्रकार से है। आप लोग हिंदी समझते हैं जो बंगाल से आए हैं सभी लोग, तो कोई माताएं अगर हिंदी समझती हैं तो जो लोग नहीं समझते उनको थोड़ा बीच बीच में बता देंगे, वैसे बिल्कुल सरल भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझिए। शिला प्रभुपाद जी ये साधक भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है। यहाँ पर इस व्याख्यान में इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान, इंद्र जो है अपनी सभा में बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ में, और एक बार उनके गुरु महाराज जो बृहस्पति देव हैं वो वहाँ पर पधारे, वो वहाँ पर आए तो उन्होंने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो इससे जो है इस कथा का प्रारंभ में प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग राजा इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के चरण कमलों के प्रति अपराध किया, फलतः बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया जिससे वे पुरोहितहीन हो गए। किंतु देवताओं के अनुनय विनय पर ब्राह्मण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने पुरोहित बनना स्वीकार किया। अपने गुरु का निरादन करने के कारण इंद्र का सारा ऐश्वर्य जाता रहा और असुरों ने एक बड़े युद्ध में देवताओं को परास्त करके इंद्र के सिंहासन को हथिया लिया। तब इंद्र देवताओं के सही श्री ब्रह्मा की शरण में आया। स्थिति से अवगत होने पर श्री ब्रह्मा ने गुरु के प्रति किए गए इस अपराध के लिए देवताओं की भर्त्सना की। उनके अनुसार देवताओं ने विश्वरूप को, जो त्वष्टा का पुत्र और ब्राह्मण था, अपना पुरोहित बना लिया। तब उन्होंने विश्वरूप के पुरोहित में यज्ञ किए और असुरों पर विजय प्राप्त किया। तो इसमें मेन प्रसंग है कि इंद्र ने किस प्रकार अपने गुरु के प्रति अपराध किया, तो हम सब सभी साधक भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार से यदि हमने दीक्षा शिक्षा ली हुई है तो शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो किसी के प्रति अनादर या अपराध नहीं होना चाहिए। तो यह अपराध हमसे जाने और अनजाने दोनों प्रकार से होता है। यह अपराध किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर कि अपराध के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से लक्षण होते हैं। तो उसमें जो है सबसे सर्वप्रथम कारण ये है कि जो जब हम यहाँ पर शिक्षा या दीक्षा लेते हैं तो अभी कुछ समय से जीबीसी ने एक नियम लागू किया है कि किसी को भी इस्कॉन में यदि दीक्षा लेनी है तो उसको पहले डिसाइपल कोर्स करना है। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी हमें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि समय समय पर हम जो है कितने भी विद्वान हों, कितने भी हम शिक्षित हों, ज्ञानी हों और हमारी पद मान और प्रतिष्ठा हो, तो हम कहीं न कहीं से भौतिक आसक्ति के अंदर और भौतिक माया के अंदर इंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी उसकी तरफ खींच जाते हैं। तो हमारा जो मूल विषय होता है उसको हम भूल जाते हैं। वो अभी आगे के वर्णन में आप सुनेंगे कि कैसे हम अपराध कर बैठते हैं जाने या अनजाने में, और बृहस्पति जी का अपराध कैसे इंद्र ने किया इससे आपको पता चलेगा, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इन अपराधों से कैसे बचना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं, और कैसे करते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। जब हमें मान सम्मान या मान प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, या हमारे पास में कुछ ऐश्वर्य होता है, तो हम उस ऐश्वर्य के पाने पर, भौतिक चीजों को पाने पर गर्वित हो उठते हैं, यानी हमारे अंदर अभिमान प्रवेश कर जाता है। तो अभिमान जो है ऐसा शब्द है, गर्व ऐसा संबंध है जो किसी भी स्तर का भक्त हो या व्यक्ति हो, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, दोनों का ही सर्वनाश होना निश्चित है। इसका सूक्ष्म अध्ययन यदि आप करें तो आपको पता चलेगा कि गर्व करना या अभिमान करना किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं या हम बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं या बहुत अच्छा हम कथा करते हैं, लोगों में हमारी जो है बहुत प्रसिद्धि है, लोग हमें काफ़ी आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमें बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से ये अभिमान हमारे अंदर प्रवेश करता है और हम जाने और अनजाने दोनों ही स्थिति में अपराध करना शुरू कर देते हैं, और इसे में हमें एहसास नहीं होता है। और इस चीज़ का मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से निष्काम सेवा करते हैं, हम निष्काम भक्ति करते हैं, हमारी किसी भी प्रकार से किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये धाम है, श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन में एक एक जीव राधा रानी के संरक्षण में है, भगवान के संरक्षण में है। हमें किसी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध मन वचन और कर्म से नहीं होना चाहिए। इससे बहुत भले आप भक्ति बहुत थोड़ी करें, बहुत सिंपल करें, बहुत साधारण तरीके से करें, लेकिन हमेशा ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें कभी भी जो है हमसे अपराध न हो, क्योंकि बहुत उच्च शिखर पर यानी बहुत ऊंचे स्थान पर भी, अच्छे पद पर और अच्छे महत्वपूर्ण स्टेज पर भी स्थिति में भी पहुंचने के बाद भक्त लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस समय इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कठिन है कि इसको अलग कर पाना, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत कठिन कार्य इस प्रकार से है कि यदि हम ज्ञान या अज्ञान, हमें ज्ञान होता तब भी हम अपराध करते हैं और अज्ञान में तो अपराध होना निश्चित है। तो भक्ति एक मार्ग है, जैसे हर चीज का अपना अपना एक गंतव्य होता है, रास्ता होता है, उसी प्रकार से भक्ति का एक अपना मार्ग है और भक्ति के मार्ग में सदाचार का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। हमें व्यवहारिक और सदाचार होना बहुत जरूरी है और निरंतर हमें 24 घंटे सोते उठते बैठते हर वक्त अपने हृदय में इस बात का भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान ने सबसे सुंदर हमारे लिए व्यवस्था की है गुरु महाराज की। हम गुरु से शिक्षा या दीक्षा ग्रहण करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही होता है कि गुरु जो है हमारे कष्टों को दूर करे। और ये भागवत का और ये शास्त्र का नियम है और शास्त्र में ऐसा निर्देश है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गुरु शब्द का हम अर्थ बताना चाहेंगे। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अंधकार से प्रकाश, अंधकार क्या है? अंधकार सारे इस जगत में जो हम भी अपराध करते हैं वो सब अंधकार है, चाहे वह ज्ञान में करें, जानकारी में करें या बिना जानकारी के करें। एकलव्य थे जिन्होंने अपने जो अपने गुरु की एक छोटी सी मूर्ति बना करके 24 घंटे अपने आंखों के सामने रखते थे, सोते भी थे तो अपने साथ में रखते थे। और हमारे साधक भक्त कुछ इस तरह से करते भी हैं, वृंदावन धाम में हमने देखा है कि वो गुरु को हमेशा अपने पास रखते हैं या भगवान को अपने पास रखते हैं, गुरु के माध्यम से उनका 24 घंटे स्मरण करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हमसे जो है अपराध न हो। हम किसी भी प्रकार की स्थिति, भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी स्थिति हमारी मनुष्य जीवन में अगर इस संसार में है हमारे पास, तो हमें एक नियम का बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए। अपने गुरु को हमेशा अपने 24 घंटे अपने अपने संग में लेकर के उनकी फोटो को रख करके या उनकी उनको जो है उनकी फोटो को अपने सामने आंखों के सामने रखिए, क्योंकि हमारे इंद्रियों से आंखों से आज अपराध के बहुत सारे कारण बने हुए हैं, मन से हमारे बहुत से अपराध होते हैं। तो एकलव्य जो है एक छोटी सी मूर्ति अपने गुरु को बना करके 24 घंटे अपने साथ में रखते थे और हर वक्त तो उनको देखते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे लेकिन हर वक्त उनको देखते रहते थे। इसलिए देखते रहते थे कि मुझसे किसी भी प्रकार का अपराध न हो, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको आपके वो किसी भी प्रकार के अपराध को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भक्तों, बहुत गहराई से ये समझने की बात है कि जो गुरु है, गुरु के अंदर भगवान सूर्य जो है सुबह निकलते हैं, पूरे संसार को उजाला, पृथ्वी को उजाला करते हैं, प्रकाश देते हैं, और इस प्रकाश से भी बढ़कर के जो शक्ति है वो गुरु के अंदर है। गुरु के अंदर इसकी ताकत होती है और ये ताकत होती है जब आप उस गुरु से अपना संबंध जोड़ते हैं। और संबंध जोड़ने के लिए गुरु के से हमारे जो शिक्षा और दीक्षा है, हमारे गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं और दीक्षा गुरु भी होते हैं। तो पहले हम शिक्षा गुरु से व्यवहारिक आचरण सीखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं और भक्ति के लिए हम अग्रसित होते हैं। और उसके बाद जब हम इसमें थोड़ी प्रगतिशील करके अपने आप को ठीक तरह से प्रस्तुत करते हैं और अपना आचरण, अपना व्यवहार एक भक्त के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि अब आपको जो है इतने सब गुरु हैं और ये गुरु की ये योग्यता है और इन गुरु से आप अपना चयन करिए और इस गुरु से आप अपना संबंध स्थापित करिए, ताकि आपके अंदर जिस भी किसी भी प्रकार के यदि अपराध हैं तो शून्य हो जाएं और अपराध रहित हो जाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, इनका जो दिव्य शरीर है वो जो है हमारे नख से लेकर के सिर के बाल तक, हम जो है हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वो 1/10,000 भाग है। हमारे बाल का जो अग्र भाग है उसका 1/10,000 भाग है। तो आप सोचिए कि हम कितने सूक्ष्म हैं। और ये सूक्ष्म जो हमारी आत्मा है, भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं। वो इसी आत्मा से पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। तो जब आप अपराधों से शून्य होकर के और गुरु की कृपा की पात्र बनते हैं, गुरु के कृपा की योग्यता रखते हैं, तब भगवान जो है हमें अपने पास यानी भगवत धाम जाने का रास्ता बताते हैं। अभी परसों के दिन जो क्लास हो रही थी, आप लोगों ने सुना होगा, प्रभु जी बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत जो भगवान का साहित्यिक अवतार यानी शब्द अवतार है, उन्होंने ये भागवत हमें इसीलिए दिया है कि इससे हम ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से चलाना चाहिए और कैसे हमें भक्तों के सुपरविजन में, कैसे भक्तों के संरक्षण में अपनी भक्ति को चलाना चाहिए और भक्ति में अपराध शून्य होकर के भगवान के धाम जाना चाहिए। तो प्रभु जी भागवत के सारे खंडों का वर्णन कर रहे थे कि ये चरण है, ये वक्षस्थल है, ये सिर है, ये है। तो इन सब का मैं शॉर्ट रूप में यानी संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत जैसे अभी हमने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ ये एक बहुत विशेष प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को आप उठा करके यदि आप पहले इसी शब्द को, रोज हम लोग भागवत सुनते हैं तो हमने कभी इस पे बहुत गहराई से गंभीरता से चिंतन नहीं किया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, आप सर्वव्यापी भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। इतनी ही बात में हमारे सारे भाव प्रकट होते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वव्यापी भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, आपको हम सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम का अर्थ है कि आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, चलते फिरते यदि आप किसी भी साधु वैष्णव सन्यासी को प्रणाम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमारे लाखों करोड़ों अपराध अपने आप धीरे धीरे कट जाते हैं। साधु के दर्शन का, सन्यासी के दर्शन का, ब्रह्मचारी के दर्शन का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी विषय के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर बात बताई है और प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि जनरली मैं आपको विषय में, अपने विषय में बता रहा हूँ कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि साधु सन्यासी का अर्थ होता है जिसके बड़ी बड़ी जटाएं हो, कम से कम 70-80 साल का हो, उसने कहीं तपस्या की हो और उसने सब भगूति उगूति लगा रखे हों, ऐसी कुछ कल्पना होती थी दिमाग में। और जनरली बाहर के भौतिक लोग ऐसी करते भी हैं, लेकिन साधु का अर्थ ये नहीं है। आज बड़े गर्व की बात है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे संसार के अंदर इस पृथ्वी पर प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ही कम उम्र में 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के ब्रह्मचारी गेरुआ वस्त्र पहन करके, तिलक करके जब प्रवचन करते हैं, भागवत की कथा करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो लोगों के अंदर सबसे बड़ा पर्दा तो इस दिमाग से पहले ही उठ जाता है, देखते ही उनको, जैसे मैंने बताया कि सूर्य के निकलते ही सारा अंधकार चला जाता है, वैसे ही जब ये ब्रह्मचारी किसी व्यास आसन पे बैठकर कहीं पर भी कथा प्रवचन करते हैं तो एक भौतिक लोगों के अंदर ऑटोमेटिक आकर्षण पैदा होता है और ये सोचते हैं कि अरे ये 20 साल का लड़का, ये 15 साल का लड़का, ये अमेरिकन, ये जो है विदेशी, हमें ऐसे बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, अरे ये तो हमारी संस्कृति है, हमें नहीं पता था। तो आज प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमारे यंग ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी का पथ ग्रहण करके वो जो है हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, इसलिए हमें उन सब का जो गिरवे वस्त्र में रहते हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने से ही हमें जो है हमारे बहुत सारे जो है पाप अनर्थ जो है धीरे धीरे कट जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बहुत सुंदर, जब आप इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विषय अपने आप में इतना गहन, इतना गंभीर, इतना गहराई वाला है कि इसको ही खाली आप 24 घंटे निरंतर आप करते रहिए तो मैं गारंटी देता हूं कि साक्षात आपको भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन कैसे होंगे, इसमें देखिए बहुत सुंदर श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में 55 श्लोक लिखे थे भगवान के गुणावतार के बारे में, उनके गुणों के बारे में प्रशंसा किया है। उसमें से एक श्लोक मैं ले रहा हूं जो इस प्रकार से है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदये सुविलोकयन्ती यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब भी भगवान का अभिषेक होता है, जब भी उनको स्नान कराते हैं, हम दर्शन करते हैं, इवन दर्शन के समय भी यदि आप ये श्लोक बोलें तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। इसका तात्पर्य सुनिए बहुत ध्यान से, प्रेम का अंजल, प्रेम का काजल लगा करके, यानी प्रेम रूपी काजल लगा करके जब हम भक्ति नेत्रों से संत पुरुष जिन्होंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण का हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं पूजा करता हूं। कहने का मतलब आशय ये है कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो दीक्षित हैं, जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है या हरिनाम दीक्षा हुई है, जब उन्हें हम इस तरह से गहराई से तीव्रता से हृदय पूर्वक प्रणाम करते हैं, और भगवान के सामने जब आप श्री राधा श्याम सुंदर जी के सामने आप जब जाते हैं तो आप ये श्लोक बोल करके और आप उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय खाली बोलिए, तो इसका मतलब कि आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और इस प्रणाम से जो है भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे और आपको राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन होने का पूरी संभावना है। क्योंकि ये संत लोग जो हमारे गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव है, ये नित्य दर्शन करते हैं। आज अपने इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं, इन सबकी साधना, इनकी भक्ति और इनके जब आप संपर्क में इनके पास जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। वो अच्छा कैसे लगता है, क्योंकि 24 घंटे ये जो है उन राधा श्याम सुंदर को अपने हृदय में लेकर के घूमते हैं, तो इसका हमें भी आस्वादन हो सकता है यदि आप गहराई से इस तरह से चिंतन करके और अपराध शून्य होकर के ये कार्य करें। तो विषय वस्तु जो है आज हमारे अपराधों के ऊपर है, और अपराधों के लिए उदाहरण के रूप में इंद्र की बात प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाते हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति जब उसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है या भौतिक मान प्रतिष्ठा, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, प्राप्त होने पर वह तुरंत जो है अहंकार में आ जाता है, गर्वित हो जाता है, तो साधारण व्यक्तियों को या अपने से नीचे व्यक्तियों को नहीं समझता और अपराध करता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल मैं अनुभव बताऊं कि एक बहुत, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं और बहुत उच्च कोटि की सेवा करते हैं, और यहाँ तक कि उस सेवा को गुरु महाराज और सारे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं सभी लोग उसको उसकी उसको जो है सब लोग उसका जो है बताते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भक्त जो है अपराध देखिए कैसे होता, वही मैं बता रहा हूं। एक साधु थे वृंदावन धाम के, और वो मौन व्रत था उनका, वो मौन व्रत रखते हैं, किसी से बोलते नहीं है उनको, मैं आज से नहीं कम से कम 20-22 साल से देख रहा हूं वो कभी बोलते नहीं है। उनको कहीं जाना था और कुछ बस के अंदर 10-15 भक्त लोग बैठ गए थे, और उनको कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था, और वो अंदर आ गए। तो ये जो बहुत वरिष्ठ वैष्णव थे, इनके इनका इनकी ये ड्यूटी थी कि वो जो है सब भक्तों को लेकर के दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो वो भक्त भी अचानक उसमें चढ़ गए, और बस के अंदर में 15-16-20 जितनी भी कैपेसिटी हो, लेकिन यदि आपके अंदर में किसी के प्रति दया है, किसी के प्रति सेवा की भाव है, तो आप कभी अपराध नहीं करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी तो तुरंत आप किसी न किसी प्रकार से अपराध कर बैठेंगे। तो उस साधु को उस वो प्रभु जी जो बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा तो यहां पे नाम नहीं है लिस्ट में, तुम इसके अंदर कैसे आए, नीचे उतरो, तुरंत नीचे उतरो। और इस तरह से उन्हें इसी बात को इतना गंभीर होकर के उसने बोला, और उन्होंने इतनी गंभीर होकर के उनकी तरफ देखा कि उस स्थिति का आज भी मेरे दिमाग में स्मरण है कि अपराध छोटा सा है, बहुत मामूली सा है, कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अपराध का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने अंदर ले रहा है। और यहां तक कि शुद्ध संत, शुद्ध साधु, शुद्ध भक्तों में दृष्टि इतनी इस चीज की प्रबल होती है कि एक सेकंड के अंदर सब कुछ जला के राख कर देती है। तो पहला उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूं कि जैसे ही उन्होंने कहा और उस व्यक्ति ने उनको उनकी तरफ एक बार देखा, और देखने के बाद इमीडिएटली मुझे एहसास हो गया कि अब कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। और जो है उसके बाद तुरंत वो व्यक्ति उतर गए वहां से, और उतरने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई, और संतान जो है पूरी तरह से मेंटल रिटार्डेड पागल बच्चा पैदा हुआ। सोचिए आप, आज हम बहुत सारी समस्याओं को, जब हमारे पास कोई भी समस्या होते हैं तो हम जो है किसी भी बाबा से, किसी भी पंडित पुरोहित से लेते हुए डॉक्टर और सबके पास जा जा करके हर व्यक्ति से, इवन जिसका कोई कंसर्न नहीं उससे भी हम जब किसी कष्ट में होते तो तुरंत उस कष्ट के बारे में पूछते हैं। लेकिन अगर आप उस कष्ट के बारे में भगवान से प्रार्थना करके, जैसे मैंने ये बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हृदय से आप प्रार्थना करके गुरु को प्रसन्न करके आप पूछिए, आपको उस समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा, गारंटी से। किसी के पास आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से। राजा परीक्षित जो है पूरे पृथ्वी के राजा थे, पर आपने देखा कि वो जब जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो हमेशा आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि इतना बड़ा राजा, इतना विद्वान राजा, और राजा परीक्षित भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, जब अपनी माता के गर्भ में थे उत्तरा के, तो उस समय भगवान ने उनकी रक्षा की थी और वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते थे इसी प्रकार से। लेकिन उनसे कैसे अपराध हुआ, जंगल में जो है श्रृंगी ऋषि को देख करके उन्होंने मरा हुआ सांप उड़ा करके उसके ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद में चूंकि संत तो दयालु होते हैं, श्रृंगी ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया था, पर उनके पुत्र ने यह देख लिया और देख करके उन्होंने श्राप दिया, और श्राप देने के बाद में ये श्रीमद् भागवत 18-12 कैंटों का पूरा व्यवस्था जो है व्यास जी को करना पड़ा हम सब की जानकारी के लिए कि अपराध हमसे नहीं होना चाहिए। तो अपराध बहुत अति सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और बहुत भयंकर से भयंकर भी होता है। और अपराध में जब कोई सती पवित्र व्यक्ति, चाहे वह माता हो या पुरुष हो, जब उसको अगर कोई बात उसके हृदय पे लगती है, तब उस अपराध को निवारण करना बहुत मुश्किल होता है, और उस अपराध की बहुत बड़ी प्रायश्चित हमें करना पड़ता है, समस्या आती है। प्रायश्चित जो शब्द है वो हम सब अगर देखा जाए एक दृष्टि से, तो श्री धाम वृंदावन में राधा रानी ने हम लोगों को इसीलिए बुलाया है कि हम यहाँ पे अपने अपराध को शून्य करके और इस चीज का प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित करने का मार्ग बनाया है कि अपने गुरु को प्रसन्न करके उनसे अपने अपराधों से क्षमा मांगें, और अपराध शून्य होकर के हम भगवान जो हमें चाहते हैं कि हम जो है उनके पास आएं। तो कहते हैं कि सारे धर्म को छोड़कर, धर्म और अधर्म सारे छोड़कर के, यानी शुद्ध हों हम और शुद्ध बनकर के भगवान की शरण में जाएं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें शुद्धता कैसे आएगी। तो शुद्धता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भगवान के नाम का जप है, जप अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 अक्षरों के नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति प्रवाहित की है। और ये शक्ति इतना जबरदस्त इस कलियुग में प्रवाहित किया है कि वो जानते हैं कि हम लोग बहुत पतित हैं, हमारी आयु बहुत थोड़ी है, और इसमें हम किसी तरह का तपस्या, दान, तप, ये सब हम शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। और आज देखिए जो है इस संसार में बहुत से पाखंडी लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तिलक करते हैं, हमारे आपकी तरह वो भी अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, भागवत करते हैं, लेकिन आप अंदर जाके देखेंगे तो शुद्धता नहीं होती है। और वो शुद्धता नहीं होने से हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, और हम अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं, और हम भी किसी कार्य में लग जाते हैं। लेकिन भक्तों, हम लोग यहाँ पर, हमारा मेन उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है वो है भक्ति का। तो हम लोग यहाँ पर भक्ति करने आए हैं, तो भक्ति लता जो है बहुत हमारी शुरू में बहुत कमजोर होती है। भक्ति लता कैसी होती है? लता का अर्थ ये होता है कि वह पौधा जो दूसरे मजबूत पौधे के सहारे उसके ऊपर चढ़ता है। इसका आशय ये है कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति हमारी मजबूत और जो है स्वस्थ तभी होगी जब हम वरिष्ठ वैष्णव के अंडर में होंगे, उनके निर्देशन में होंगे, गुरु महाराज के निर्देशन में होंगे। नहीं तो ये भक्ति सिर्फ एक दिखावा मात्र रह जाएगी और हम शुद्ध रूप में भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो हमें भक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनके साथ में, उनके संरक्षण में हमें भक्ति करनी चाहिए और हमेशा अपने गुरु महाराज से संपर्क में रहना चाहिए। और गुरु महाराज ने हमें शिक्षा और दीक्षा के द्वारा जब हमें दीक्षा दिया तो हमें उन्होंने जो चार नियम बताए उन नियम का पालन करते हुए, चार नियम का पालन और चार अपराध जो है, जैसे चार नियम है, किसी तरह का नशा नहीं, किसी तरह का मांस भक्षण नहीं, किसी तरह का इलेसिएट सेक्स नहीं, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं, किसी तरह का ट्रेडिंग बिजनेस नहीं। तो ये सब हमें चार नियम है जो नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत सिंपल, बहुत साधारण बात है, लेकिन आप इसकी गहराई से विचार करें तो ये हमारे भक्ति का स्तंभ है, पिलर है, इसी पे हम खड़े हैं। और ये कमजोर होगा तो आप गिर जाएंगे, भक्ति नहीं होगी। और ये मजबूत तब होगा जब आप भक्तों के संग में होंगे। तो इसलिए अति आवश्यक है कि हम जो है ये चार नियमों को इन भक्तों के सहारे, इनकी कृपा के पात्र, गुरु की कृपा के पात्र बन करके इसे बहुत गहराई से मजबूत करें। और इसके साथ साथ चार नियमों का पालन करें। चार नियम क्या है? 16 माला का जप करें जो हमें दीक्षा के समय गुरु महाराज ने दिया है। ये भगवान का नाम अपराध शून्य करने में बहुत मदद करेगा हमें, लेकिन ये जब भक्तों के निर्देशन में होगा, भक्तों के गाइडेंस में होगा, भक्तों के समूह में होगा। इसी प्रकार से 16 माला का जप, भागवत का श्रवण, धाम में निवास और भक्तों का संग, ये चार नियम हैं और चार नियम हैं। यदि आप इसको बहुत गहराई से करते हैं तो कभी भी आपका पतन नहीं होगा और इसी धाम में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, भक्ति के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत में जैसे प्रभु जी ने अभी परसों बताया कि ये स्कंद ये है, तो प्रत्यक्ष भगवान का पूरा स्वरूप, जैसे आप राधा श्याम सुंदर जी के विग्रहों का दर्शन करते हैं उस समय जब आप सामने खड़े होते हैं, तो जब आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हृदय से आप बोलिए। और हृदय से बोल करके इसका जो तात्पर्य हमने बताया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयंती यम श्याम सुंदर मचिंद गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। इस तरह से जब आप भक्ति करें, इस भाव से दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। और हृदय को शुद्ध करने का जो प्रोसेस बताया गया है, जो लाइन बताया गया, जो मार्ग है, वो है हरि नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें सदाचार और बहुत बेसिक 16 नियम है जो हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पे ही चिंतन करिए। और वो नियम इस प्रकार से हैं। सामान्य शिष्टाचार है, ये सदाचार है जो भक्तों के अंदर अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भक्त अपने को कहते हैं तो ये होना बहुत जरूरी, जिसको हम किसी भी स्थिति में थोड़ी सी भी हमारी मान प्रतिष्ठा या भौतिक ऐश्वर्य मिलता है तो हम तुरंत इसको अपने अंदर से निकाल देते हैं। और यही हमें दूसरा भक्त या तीसरा भक्त हमारे अंदर देखता है कि हम जो है कितने व्यवहार कुशल हैं। आप कितने भी पांडित्यपूर्ण बातें करें, कितना भी भागवत करें, कितनी भी कथा करें, यदि आप वो छोटा सा उस चीज को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी वो सारा किया हुआ शून्य हो जाएगा, उसका कोई भी नहीं मिलेगा। और हम आपस में देखते हैं कि हमारे भक्त एक दूसरे को बोलते हैं कि अरे ये भक्त देखो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा, ऐसा कह रहा। ये बहुत सामान्य व्यवहार है, और सामान्य व्यवहार क्या है वो अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण पहला नियम है, सभी भक्त जनों को श्री भगवान, माता पिता, शिक्षक एवं बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से जैसे मैंने बताया क्या प्रभाव होता है। दूसरा नियम है, अन्य स्त्रियों को माता के स्वरूप में देखना चाहिए। तीसरा नियम है सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। कपड़ा आज जो पहने कल सुबह धुलाई हो, धुला के धुल को कैसे भी हो, कपड़ा अच्छा हो खराब हो कुछ भी हो, लेकिन धुला होना चाहिए। उससे मन की भी शुद्धता आपकी होगी, शरीर की शुद्धता के साथ मन की शुद्धता। मन के अच्छे विचार तभी आएंगे जब आप शुद्ध चेतना में होंगे। सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम एक शब्द अपने मुंह से जब बोलते हैं और 10 लोग सामने बैठे होते हैं तो उस एक शब्द के 10 अर्थ निकलते हैं। तो शब्द जब अपने मुंह से आप निकालते हैं किसी से प्रति किसी के लिए भी, तो बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से, बहुत विनम्र होकर के आप बोलिए, ताकि उससे अगले व्यक्ति को कोई उसका वो विपरीत अर्थ न समझे और आपके प्रति कोई अपराध, उसके प्रति कोई अपराध न हो जाए। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करें। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलने का अर्थ है जब तक कोई बहुत विशेष स्थिति परिस्थिति आपकी जान नहीं जा रही हो, भगवान ने उसके तमाम नियम बताए, लेकिन मोटे मोटे शब्दों में ये मैं सामान्य नियम बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि अकारण ही लोग कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्यों करते हैं उसका जवाब न उनके पास होता है न सामने वाले के पास, लेकिन लोग ईर्ष्या करते हैं, इससे अपना वो नुकसान करते हैं और बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है आगे का नियम, ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्याभिचारी, अव्ययी, ठग एवं मिथ्याभाषी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, इनके संग से बचना चाहिए। फिर भी आपके बचते हुए भी अगर ये आपके करीब आते हैं तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप गंभीरतापूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो ये व्यक्ति आपके पास आने में भी डरेंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास। आपका स्वभाव, आपका चिंतन जैसा होगा उसी प्रकार का व्यक्ति आपके नजदीक आएगा, ये प्रकृति का नियम है। आप शुद्ध हो जाइए, सारा संसार आपके, कितना भी आपका पूरा संसार यदि इन चीजों से दूषित है तो उसकी हिम्मत नहीं आपका एक भी कुछ नुकसान कर सके, आपके नजदीक भी आ जाए बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। कितनी माताओं को हमने देखा है जो पवित्र हैं, सती हैं, वो चलती हैं रास्ते में और बहुत लोगों के साथ छेड़खानी, बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी हिम्मत नहीं उनके पास चले जाएं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सीता माता जैसी जिस समय वो पर्ण कुटीर में थी और तिलक और साधु और ब्राह्मण का वेश डाल करके रावण भी उनके पास गया था, लेकिन सीता माता चूंकि वो माया वाली सीता थी इसलिए संसार को एक लेसन देना था, पाठ पढ़ाना था, और ये सब आगे रामायण चलती है और आपने देखा क्या स्थिति थी। लेकिन आज भी ये सत्य है कि कोई शुद्ध पुरुष होगा, शुद्ध भक्त होगा, चाहे वह माता हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति उसके नजदीक नहीं आएगा। ये उसकी शुद्धता पर, अपने आंतरिक शुद्धता पर निर्भर करती है ये बात, और मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि वो व्यक्ति अपने दूर हट जाएगा, साइड हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए भक्तों को हमेशा देखिए आप, उनको किसी भी समाज में, परिवार में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत कठिन होता है कि वो जो है उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मार्ग अलग है और हम इस मार्ग पर स्वच्छता के लिए प्रयास कर रहे हैं, भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। पर आपके अंदर ये शुद्धता होनी चाहिए कि आपसे वो प्रभावित हों, आप उनसे कभी प्रभावित मत होइए। और आगे आपकी रक्षा भगवान और गुरु स्वयं करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद है छींकते समय अथवा जम्हाई लेते समय हाथ से मुख को ढकना चाहिए, ओपन ऐसे नहीं करना चाहिए। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित पुष्प और पवित्र वस्तुओं को नहीं लांगना चाहिए, कहीं ये चीजें पड़ी हो तो उनको लांगो मत। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक पुस्तकें, जप माला, करताल इत्यादि को भूमि पर न रखें। लघु शंका के पश्चात हाथ पैर धोना चाहिए और शौच के उपरांत अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन एवं प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व का पालन करें, नाखून छोटे और स्वच्छ हों। जो लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हैं उन्हें प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत सामान्य नियम है और नियमों का पालन करते हुए यदि हम भगवान का एकाग्र होकर के भक्ति करते हैं और जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार से आप भगवान का दर्शन करते हैं, गुरु को आप प्रणाम करते हैं, वरिष्ठ वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो आपके अंदर शुद्धता का शुरुआत हो जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये शुद्धता आपको एक दिन इस स्थिति में ले जाएगी कि ये संसार बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसे हम देखें, अपने आप में इतना गंभीर और इतना शुद्ध विषय है ये। तो इस प्रकार से हमने आज श्रीमद् भागवत की चर्चा की और हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे और आशय करेंगे कि आप लोग भक्त होने के नाते सामान्य नियमों का पालन करते हुए और अपने गुरु और वरिष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में उनके सानिध्य में भक्ति करें और धीरे धीरे आपके इन सामान्य विषयों के अंदर फिर धीरे धीरे आप जो है गंभीरता से बेसिक चीज़ों को समझते समझते काफ़ी एडवांस स्टेज पर जाएंगे और आपसे कोई भी अपराध नहीं होगा। और अपराध सुनने होकर के जब आप करेंगे तो तुरंत आपको जो है भगवान अपने गले से लगाएंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। आपके किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, दो मिनट है हमारे पास। यस प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रश्न किया प्रभु जी ने। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग भगवान के सामने कई बार क्या हो गया, गोल गोल घूमते हैं। बहुत से ऐसे भक्त, अपने भक्त खैर नहीं करते पर बाहर से जो लोग नए लोग आते हैं और खास करके बंगाल साइड के लोगों को मैंने देखा कि जब वो भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं तो उसके गोल गोल मतलब परिक्रमा करना ठीक है पर उनके सामने एक स्थान पर गोल में नहीं घूमना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ये निराकारवादी जो लोग होते हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं इस बात को और हम अपनी आत्मा का मतलब हम ऐसे गोल घूम करके भगवान को ये दर्शाते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने आप में सक्षम हैं। ये भाव ये प्रदर्शित करता है। तो हमें प्रणाम का जो गुरु महाराज ने और भक्तों ने बताया है कि हमेशा अपने बाईं तरफ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि दाहिने साइड में हमारे गुरु महाराज होते हैं और बाएं साइड में जो है हमारे विग्रह होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा जब भी जो है विग्रहों को अपने बाएं साइड से प्रणाम करते हैं। प्रभु जी का दूसरा प्रश्न है कि करताल वगैरह जो उठा करके वहां पे टेबल पे रखते हैं, तो प्रभु जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये श्रीमद् भागवत है, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग थोड़ी शुद्धता में जरूर कमी रख रहे हैं क्योंकि ये भगवान का जब हम एक तरफ करें कि साहित्यिक अवतार है, शब्द अवतार है, इसको बड़े मान प्रतिष्ठा से इसे हमें हाथ में लेना चाहिए, रखना चाहिए और इसके लिए लाल वस्त्र या कोई कपड़ा पहना करके, मतलब एक भगवान का स्वरूप है ये और इस स्वरूप को जितने भाव से जितने उससे आप इसको मान देंगे उतनी अंदर आपकी शुद्धता आएगी। तो करताल है, मृदंग है, ये सब चीजों को उचित स्थान पर उचित उसको जैसे अभी देखिए ये कितने सुंदर तरीके से रखा हुआ है मृदंग यहाँ पे, तो ये इस तरीके से होना चाहिए क्यों इसे इसमें स्वयं भगवान है ये करताल और ये सब करताल और ये सब जो है स्वयं ये भगवान का स्वरूप है। भागवत जो है स्वयं हम बता रहे हैं कि इनका भगवान का स्वरूप है ये, स्वरूप यानी जिनका एक पर्टिकुलर आकार है, रूप है और हम दर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीट बैग जो है ये हमारा जो जप माला है ये साक्षात जो है इसमें भगवान के नाम का स्मरण करते हैं हम, और भगवान का स्मरण जब इस नाम से माध्यम से हम बीट बैग चांटिंग करते हैं तो एक एक तुलसी है ये, तुलसी भगवान को कितनी प्रिय, तुलसी गले में रहती है हमारे, तो तुलसी के प्रति इस तरह के पूरे भाव से आपको किसी भी जूठे स्थान पर या टेबल पर या कहीं पर भी जहां आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, हालांकि ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम प्रसाद भी उसी तरह से है लेकिन जूठे स्थान पर इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में नित्य इस चीज का ध्यान करते हुए हमें इसका अगर ये शुद्धता आप लाना शुरू कर देंगे तो आगे की शुद्धता का गारंटी गुरु और भगवान स्वयं ले रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें भगवत नाम की प्राप्ति होगी और हमारे अंदर शुद्ध विचार आएंगे और हम अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करेंगे बिना किसी भौतिक डिस्टर्बेंस के। हरे कृष्णा।